बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम और बहुत बहुत सुपर नाज़रीन हज़रात। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह खूबसूरत से मुस्कुराहट के साथ अपनी प्यारी सी और एनर्जी से भरी हुई सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। वक्त को ज़ाया किए बगैर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खूबसूरत फरमान से और फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का खूबसूरत फरमान आपने सुना और उम्मीद करते हैं कि आज के दिन हम इस फरमान पर अमल पैरा होने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज फिर से खुर्रम देर से आए हैं, मेरे ख्याल से ट्रैफिक में फंस गए हैं, खैर कुछ ही लम्हात में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर सुलेल फातिमा साहिबा। बच्चों में नींद की चलने की बीमारी के बारे में हम बात करेंगे और हमारे मजहबी उमूर के जो माहिर हैं नवीद नकवी हमारे साथ होंगे, इंशाल्लाह उनसे भी टेलीफोन पर गुफ्तगू रहेगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ जो वक्त हुआ है सेब साहब के पास चलने का, आज वो हमें अनार की कुछ खट्टी मीठी जो खासियत है वो बताएंगे। आप चलिए सेब साहब के पास, मैं चलती हूँ अपनी जगह पर।
अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपसे अनार के बारे में बात करेंगे। अनार देखिए उन फलों में शामिल है जो हमेशा ही अपनी इफादियत और मजे की बिना पर लोगों में पसंद किए जाते रहे। इस फल का कुरान में भी जिक्र हुआ है। इस दरख्त का असल वतन ईरान और उसके अतराफ के इलाके रहे। अनार का दरख्त छोटा होता है, इसकी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 6 मीटर तक पहुँचती है। ये कम गर्मी वाले इलाकों में उगता है। इसकी शाखों पर थोड़े बहुत कांटे होते हैं, पत्तियाँ एक दूसरे के मध्य मुकाबल शाखों पर लगी होती हैं। ये चिकनी और सादा सी होती हैं। अनार के फूल बहुत खूबसूरत सुर्ख रंग के मोटे मोटे से होते हैं, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती। फल गोल और मुख्तलिफ साइज के होते हैं। इन पर मौजूद मोटा छिलका लाल या पीले रंग का होता है। अनार की तकरीबन 20 किस्में दुनिया में पाई जाती हैं। अनार मौसम खिजां का एक खूबसूरत और खुशमजा फल है। इस फसल के दूसरे तमाम फलों के मुकाबले में इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसीलिए जिस्म की क़ुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है और बीमारियों के मुकाबले में जिस्म की हिफाजत करता है। कदीम और रवायती तिब में पूरी दुनिया में इस फल और इसके दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों की अहमियत को माना गया है। ये दिल की बीमारियों, दांत और कान के दर्द और वबाई बीमारियों से इंसान को महफूज रखता है। अनार खून बनाता है और खून की सफाई में भी अहम किरदार अदा करता है। सिन रसीदा लोगों में गुर्दों को कुव्वत देने वाली बेहतरीन दवा अनार है। अनार का रस पीने से चेहरे का रंग निखर आता है, ये तबीयत को बशाश बनाता है और खुशी की कैफियत पैदा करता है। इसे बैठी हुई आवाज खुल जाती है। इसके अलावा दिल और मैदे को तकवीत देता है। अनार के रस को अगर रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। जहनी तनाव, थकन और घबराहट पैदा करने वाले हार्मोन की सतह भी नीचे आ जाती है। इससे खून की चर्बी भी कम हो जाती है। लिहाजा अनार दिल के दौरे, ब्रेन स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारियों के खतरे को दूर कर देता है।
जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अनार की कुछ खास बातें आपने सुनी कि अनार का रस पीने से आप हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अनार पिए और सेहतमंद रहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सेगमेंट शुरू हो चुका है, चलते हैं डॉक्टर सुलेल फातिमा की खिदमत में ताकि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम,
कैसे हैं डॉक्टर साहब?
अल्हम्दुलिल्लाह।
और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में।
आप लोग का शुक्रिया कि मुझे दावत दी।
बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू और बहुत दिलचस्प मौजू है जो आप आज लेके आई हैं कि बच्चों में नींद में चलने की बीमारी। तो अगर पहला सवाल यहाँ से शुरू करें कि ये बीमारी है या मुश्किल है, तो ज़्यादा बेहतर होगा।
बीमारी हम उस स्टेज, ये कहा जाता है कि बच्चों में नींद में चलना नॉर्मल है।
ठीक।
एक उम्र तक के, जब तक 12 साल या 14 साल तक वाली टीनेजर्स शुरू ना हो जाए,
नौजवानी तक।
जी
बिल्कुल।
लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या सिवियरिटी है। अगर बच्चा नींद में चल के खाली आके अपने वालदैन के बिस्तर पर आके सो जाता है तो उसको बीमारी में नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन जब हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो हम सिवियरिटी डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से हम कहा जा सकते हैं कि ये बीमारी में शुमार होती है।
ठीक है।
और नींद में चलने, नींद पैरासोमनियाज, अगर आपने ये वर्ड सुना होगा, उसके अंदर तमाम बीमारियां जो नींद से रिलेटेड होती हैं बड़ों में या बच्चों में, उसको हम एक टर्म देते हैं, उसमें स्लीप वॉकिंग का भी नाम आता है। तो यानी स्लीप वॉकिंग इटसेल्फ एक बीमारी में काउंट हो सकती है।
ठीक है, यानी एक बीमारी है ये। तो डॉक्टर साहब, नींद के किस हिस्से में आप बोल सकते हैं चलने का जो मसला है? پیش آتا ہے.
اچھا ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے جو بھی ہمارے اندر فنومنا بنائے ہیں وہ بہت کمپلیکس ہے. جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہماری زبان پہ بس سبحان اللہ ہی ہوتا ہے.
بالکل بے شک
جی. تو نیند کے بیسکلی پانچ اسٹیجز ہوتے ہیں, یعنی ریم سلیپ میں کہتے ہیں, نان ریم سلیپ میں, نان ریم میں چار اسٹیجز ہوتے ہیں, اس کے بعد ریم سلیپ ہوتی ہے. تو نان ریم سلیپ کے تیسرے اور چوتھے اسٹیج میں جو کہ گہری نیند کا فیز ہوتا ہے, اس کے اندر نیند میں چلنا دیکھا جاتا ہے
جس میں آپ اس دنیا میں ہوتے ہی نہیں, آپ یہ بول دیجیے
جی. اس میں خواب بھی یوزولی جو وہ خواب جو ہمیں یاد رہ جاتے ہیں, جو بہت لمبے ہوتے ہیں, یعنی ایون اس میں رنگ یاد رہ جاتے ہیں کہ کہاں تھا, وہ سب اس فیز میں آ رہے ہوتے ہیں گہری نیند میں. تو یہ اس تیسرے یا چوتھے اسٹیج میں نان ریم سلیپ کے نیند میں چلنا دیکھا جاتا ہے, بڑوں میں یا بچوں میں دونوں میں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بیماری ختم ہو جانی چاہیے, نارملی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ ٹین ایج تک پہنچنے کے بعد بھی نہ ختم ہو تو پھر یہ ایک پریشانی کی بات ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آیا یہ بیماری ہم اس طرح اگر بولیں کہ صرف بچوں میں ہی زیادہ پائی جاتی ہے یا بڑوں میں بھی اس کا ہے رجحان, کس طرح سے آپ؟
عموماً زیادہ تر بچوں میں دیکھا جاتا ہے, اور وہ بچے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بچہ نیا چلنا شروع کرتا ہے, چار سال, تین چار سال کی عمر سے لے کے 12 سال تک کی عمر میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر رات میں بچہ چل رہا ہے اور یہ ریگولر ہونا چاہیے, اس ٹائپ کا کچھ نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن, کاز کے کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے, اس کے حساب سے عمر بھی لمٹ ہوتی ہے اور کس طریقے سے ختم ہو یہ بھی لمٹ کرتا.
تو اگر ہم یہ ایک جو میرے ذہن میں, چونکہ خود میں نے اپنے بچے کو جو دیکھا ہے, جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں نیند میں, تو اس وقت بھی یہ ہوتا ہے, اس وقت وہ چل نہیں سکتے لیکن ہاتھ پاؤں ضرور چلاتے ہیں چھوٹے بچے بھی جو نوزاد ہوتے ہیں.
جی یہ کہا جاتا ہے کہ بچے بھی خواب دیکھتے ہیں.
بالکل, ہم کہتے ہیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کا کانسیپٹ ہمارے یہاں
ہے. ہمارے یہاں ہے ایسی باتیں کہ پریاں ہی ہیں, فرشتے ہیں, بچوں کو بچے نیند میں مسکرا رہے ہیں.
اس کا بھی لنک ہے اس سے,
اس کا بس خواب سے. ہم سائنس تو ان ساری باتوں میں نہیں بلیو کرتی ہے, لیکن خواب میں بچہ مسکرا سکتا ہے. ایون جو بچے باتیں کرتے ہیں,
بالکل,
بڑے بھی باتیں کرتے ہیں, بچے بھی بات, تو یہ خواب سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو.
اچھا میں ایک سوال جو ابھی میرے ذہن میں آیا, اکثر مطلب میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب مائیں یہ سوچ رہی ہیں کہ بچہ دن بھر بھاگ رہا ہے, کود رہا ہے, کھیل رہا ہے, تو وہی چیز وہ رات کو خواب میں ریپیٹ کر کے چل رہا ہو, دیواروں میں سر لگ رہا ہے اس کا یا کہیں لگ رہا ہے, تو یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ پوری دن بھر کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے یا بہت ایکٹیو ہے تو آپ خواب میں چل رہے ہیں, نیند میں چل رہے ہیں آپ؟
نہیں, اس کا ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بچہ پورے دن میں بہت تھکا ہوا ہے یا اس کو پراپر دن میں سلیپ نہیں ملی, یعنی جو آئیڈیل کہا جاتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کا نیپ ہونا چاہیے بچے کے لیے بھی, اگر وہ نہیں ملی تو پھر رات میں اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز دیکھی جاتی ہے کہ بچہ نیند میں چلنے لگتا ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ یہاں تک تو, اور ان شاء اللہ گفتگو آگے چلے گی, اور یہ گفتگو چلے گی گردیزی صاحب کے ساتھ. ان شاء اللہ خورم بھی ہمارے ساتھ کچھ ہی لمحات میں جو ہے وہ اسٹوڈیو آ گئے, پوچھیں گے بھائی دیر کیوں کیا انہوں نے, اور اگر ان کا میرے خیال سے مائک سیٹ ہے تو ان سے بات بھی کرتے ہیں. جی خورم,
بالکل, آپ کا اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں, ایک بار پھر جو ہے آپ کی خدمت میں معذرت پیش کرتا ہوں, یہ آج کل جو ہے ٹریفک نے مجھے جو ہے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. اور بہرحال تو ابھی جو ہے میرے خیال سے ہم لوگ جیز کی سیر کرنے جا رہے ہیں. جی تو چلتے ہیں آپ لوگ جیز کی سیر کرنے, تھوڑا سا آپ کو غصہ ٹھنڈا ہو جائے, میں دیر سے آیا ہوں, اس کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے بات چیت کرتے ہیں. جی ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, آپ لوگوں نے تاریخی شہر ایران کا ایک بہت ہی تاریخی شہر, بہت ہی خوبصورت قسم کی آرکیٹیکچر معماری آپ کو وہاں دیکھنے میں ملے گی. جب بھی موقع ملے ضرور وہاں کا چکر لگائیں, کیونکہ ایسی عمارتیں ہیں جو بندے کو, انسان کو جو ہے وہ بہرحال تھوڑا سا جو ہے وہ دنگ کر دیتی ہیں, پریشان ہو جاتا ہے انسان. بہت ہی تاریخی عمارت, بڑا خوبصورت شہر. اور میں صرف یہ بتاتے چلوں کہ فیس بک میرے پاس آن لائن ہے, یہاں پر آپ کے لیے جو سوال, جو چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے تصویر مقابلے اور بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خوبصورت جملہ لکھنے کا مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور آپ لوگ جو ہے بہرحال اس میں شامل ہوں. چلتے ہیں رباب کی طرف, تاکہ رباب جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جو گفتگو بچوں میں نیند میں چلنے کی جو عادت ہے اس کے بارے میں کر رہی ہیں, اس کو آگے چلا سکیں. جی
بہت شکریہ خورم, لیکن گفتگو کی طرف جانے سے پہلے میں طلعت اعزاز صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بالکل آپ کا سلام ہم تک پہنچتا ہے, اور میں بھی آپ کو وعلیکم السلام کہتی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے بیٹی کا درجہ دیا, بہت بہت شکریہ. اور طاہر رضا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں صبح بخیر پوری ٹیم کو سلام عرض کیا, بہت بہت شکریہ. اسی طرح کمنٹ کرتے رہیے. چلتے ہیں گفتگو کی طرف واپس. ڈاکٹر صاحبہ, پتہ چل گیا یہ بیماری ہے, اور یہ اب یعنی اس بیماری کی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, یعنی کیوں ہوتا ہے بچوں میں؟
جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سلیپ کو ہم نان ریم اور ریم سلیپ میں اسٹیجز ہوتے ہیں, और एक ये तमाम स्टेजेस मिलके एक स्लीप साइकिल बनाती है, यानी 90 से 100 मिनट की एक स्लीप साइकिल होती है। यानी हम इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रात की नींद में 4 से 5 स्लीप साइकिल्स होती हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि ये नींद में चलने की बीमारी बच्चों में इसलिए ज़्यादा कॉमन है कि बच्चों में जो गहरी नींद का फेज़ है वो ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं ये फेज़ कम होता है, इसलिए कि स्लीप हमारे लिए बहुत खाली सोना नहीं है, खाली नींद नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिपेयर मैकेनिज़म्स हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं जो बच्चों में ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, या डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप कहें या ग्रोथ के हिसाब से कहें तो बच्चों में ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए वो फेज़ बच्चों में ज़्यादा ड्यूरेशन के होते हैं।
ठीक है,
सबसे पहला वजूहात में मैं ये कहना चाहूँगी कि हेरिडिटरी और जेनेटिक रिश्ता अमूमन ज़्यादातर बीमारियों में
जी,
ये भी देखा जाता है कि आइडेंटिकल ट्विन्स में 10% ज़्यादा ये पाई जाती है चीज़। और अगर माँ बाप में फैमिली हिस्ट्री है कि माँ बाप नींद में चलते थे तो बच्चे भी स्लीप वॉकर्स हो सकते हैं। ये तो जेनेटिक्स की बात हो गई। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बच्चा अगर रात में सोने से पहले पेशाब नहीं करने जा रहा है और यूरिनरी ब्लैडर उसका फुल है तो फिर उसको नींद में चलने की बीमारी के साथ वो नींद में घर में अनडिज़ायरेबल जगहों पे पेशाब कर सकता है।
बिल्कुल
जी। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रेस और एनजाइटी, यानी बच्चे ने अभी स्कूल में दाखिला लिया है, नए दोस्त नहीं बना पा रहा, या उस्ताद के साथ खौफ है, उस्ताद से कोई खौफ है, इस तरीके की वजूहात की वजह से भी हो सकता है। और बच्चे के लिए स्लीप हाइजीन, यानी जिस माहौल में वो सो रहा है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो एक काम क्वालिटी स्लीप एक्वायर करे जब वो सोए, स्पेशली रात के वक्त। ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चा बहुत दिन का पूरे दिन का थका हुआ है, दोपहर में कोई नैप नहीं लिया है, थकावट है, या फिर पिछले रोज़ कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ में था बच्चा कि स्लीप नहीं मिल पाई है, पूरी नींद नहीं हुई है, तो ये वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चा नींद में चल रहा होता है, स्लीप एपनिया, या फिर रात में मिर्गी जैसे झटके आना बच्चों में, या फिर कोई दिल की बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल रिदम्स है जी, तो इसकी वजूहत, इन वजूहत की वजह से भी बच्चा नींद में चल सकता है। और ये बात सुन के रहता हूँ कि कुछ अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ हिप्नोटिक्स या स्टिमुलेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से भी बच्चा रात में चल सकता है।
इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं बच्चे को, क्या नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस की तरफ आए हैं कि क्या घर के जो माहौल के ऊपर है, आपने स्कूल की तरफ तो इशारा कर दिया, घर का माहौल भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होगा इसमें, तो घर के माहौल की वजह से भी आपके ख्याल में ये हो सकता है
जी। इसलिए कि जब बच्चा सो रहा है, मैंने जिस तरह मेंशन किया कि माहौल पुरसकून होना चाहिए उसकी, जब वो सोए तो कोई टेंशन या उसको कोई उसके
मन में
जी, और एक क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अगर आप रोकना चाहते हैं या इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो स्लीप हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
आपने यहाँ वजूहात की तरफ बता दिया, आप इसकी अलामतों की तरफ भी आते हैं, एक माँ बाप किस तरह तशखीस दे सकते हैं कि उसके बच्चे में ये बीमारी है नींद में चलने की, तो क्या किया जाए
असली ये नींद में चलने की बीमारी जो बच्चों में, देखिए इसको हम दो तरीके से, दो इकसाम कह सकते हैं इसकी है। एक तो काम स्लीप होती है जब बच्चा नया चलना सीखता है, तो ये इतना नुकसानदेह नहीं होती, अभी बच्चा ज़्यादा चलना भी नहीं सीखा होता है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो आके अपने माँ बाप के पास आके सो जाता है, तो ये इतना नुकसानदेह नहीं। दूसरी स्लीप जो कि थोड़ी मिडिल स्कूल के बच्चों में देखी जाती है, इसको एजिटेटेड कहते हैं, यानी इसके अंदर बच्चा अपने घर वालों को या फिर अपने आप को कोई नुकसान पहुँचा सकता है। ये कह सकते हैं कि स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना इट्सेल्फ कोई नुकसानदेह या जानलेवा चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो बच्चा चीज़ कर रहा है उससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। सिम्टम्स में यह है कि बच्चा, देखा जाता है कि बच्चे जब सोते हैं उसके तकरीबन एक आध घंटे बाद वो बिस्तर से उठकर चलने लग जाते हैं, आँखें कभी खुली भी हो सकती हैं, बंद भी हो सकती हैं, चाल सुस्त सी हो सकती है, ऐसा लगता है कि बच्चा कन्फ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड है,
समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
अक्सर बच्चे तो इस तरह घर में घूम रहे होते हैं कि जैसे कोई चीज़ खो गई है और उसको तलाश कर रहे हैं। और ये भी देखा जाता है जैसा मैंने मेंशन किया पहले कि बच्चे घर में अनडिज़ायरेबल जगह पे पेशाब कर दें या फिर कोई चीज़ उठा के गिरा दें। और ये भी देखा गया है कि कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं, मसलन कपड़े उतार के पहन रहे हैं नींद में, या फिर गैराज में उतर गए अगर लॉक नहीं है दरवाज़ा, तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसके ये देखा जाता है 5 से 15 मिनट तक ड्यूरेशन इसमें اس سے زیادہ نہیں ہوتا, 15 منٹ سے زیادہ نہیں واک کرتا نیند میں.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, مجھے لگتا ہے خرم کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں.
یہاں پر جو ہے بارے جو موضوع آپ نے انتخاب کیا, بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پر ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں, اور ایک سوال جو ہمارے ان باکس میں آیا اس میں پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ ہمیں بتایا گیا کہ بچہ اگر رات کے ٹائم پہ رو رہا ہو تو اس کو رونے دیا جائے اور وہ روتے روتے جو ہے وہ سو جائے, تو یعنی وہ رو رہا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے آپ گھومیں پھریں, یہ میرے خیال میں جو مطلب ان کا یہ ہے. تو یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ کہ بچے کو رونے دیا جائے اور پھر وہ خود بخود تھک کے سو جائے, یہ صحیح ہے اس سے یا بچے کو اس سے نقصان پہنچتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے آپ لوگ بات دی, دوسرا جواب
نیند میں بچہ رو, میں پوچھنا چاہوں گی بچہ نیند سے اٹھ کے رو رہا ہے یا سونے سے پہلے رو رہا ہے؟
جہاں مجھے سمجھ آ رہی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اکثر بچے سونے سے پہلے روتے ہیں, تو وہ انہوں نے یوں لکھا ہے کہ بچے کو جو ہے رونے دیا جائے اور وہ تھک کے سو جائے.
تھکن ایک طریقے سے پازیٹیو ہے, اس لیے کہ ایک اچھی ساؤنڈ سلیپ ہو سکتی ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ اتنا روئے کہ وہ سو ہی نہ پائے, تو یہ میرے خیال سے ہیلدی نہیں ہوگا.
ایک تو یہ بھی ہوتا ہے جب بچے رو رہے ہوتے تو مائیں فوراً گود میں اٹھا لیتے, تو گود کی عادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچے کو آپ نہ اٹھائیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر بچہ بہت حد سے جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا رو رہا ہے حد سے زیادہ, تو اس طرح بھی نہ ہو کہ بچے کی طبیعت خراب ہو جائے یا اس کو سانس چڑھ جائے روتے روتے, جو مسئلے پیش آتے ہیں بچوں میں.
جی, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے بچپن میں جو اسٹارٹنگ کی ایجز ہوتی ہے اس میں رونا ہیلدی ہوتا ہے, اس لیے کہ لنگس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہیلدی عمل ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر رو رہا ہے, کیا وہ چپ, اگر کوئی طریقہ ہے کہ اس کو سافٹلی بہلا پسلا کے سلا دیا جائے تو آئی تھنک یہ ہیلدی ہوگا.
ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت ہی بہترین گفتگو چل رہی ہے آپ کے ساتھ. تو یہاں ہمیں چلنا ہے خورم کے پاس, تو دیکھتے ہیں خورم ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں.
جی, میں اس سے پہلے کہ ایک جگہ پر آپ کو لے کے جاؤں, ایک اور سوال جو ہے آصف اقبال صاحب نے پوچھا بارے, یہ جو میں نے کہا موضوع ہے ایک دم سے 4-5 سوال ہمارے پاس آ گئے, اور اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر بچے کو جو وہ فیڈر دیا جاتا ہے وہ اسی کے ساتھ وہ اس کے منہ میں ہو اور اسی کے ساتھ وہ جو سو جائے, تو اس میں کیا اس کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں؟
یہ بالکل, میں اگر اپنا پرسنل تجربہ بتاؤں تو بہت نقصان دہ ہے, ڈاکٹر صاحبہ سے ہی پوچھ سکتے ہیں. دانتوں کی جو کہتے ہیں وہ کیڑے لگنے کا جو ہے وہ مرحلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. حتماً کہتے ہیں کہ اگر بچے کو دودھ کی بوتل نہیں دے رہے, پانی اس میں ڈال کے آپ دیجیے تاکہ وہ منہ
ایک دفعہ لاسٹ دفعہ واش ہو جائے,
واش ہو جائے. وہی صحیح ہے بالکل
جی, اور سوتے یہ کوشش کریں کہ اب بچے کی جب آنکھیں بند ہو رہی ہے تو بوٹل نکال دی جائے.
بالکل ٹھیک ٹھیک ہے, چونکہ اسے بھائی گلے میں گرنے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور اب چلتے ہیں خورم کے پاس تاکہ ہمیں خوبصورت سا وقفہ لے سکیں. جی
بہت شکریہ رباب جی. بالکل, ہمارے پاس جو ہے ایک خوبصورت سا میرے خیال سے ترانہ ہے, اور وہ ہم ملاحظہ فرمائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے گفتگو کو آگے چلائیں گے, پروگرام کو آگے چلائیں گے. صبح زندگی آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں, 7:35 تہران ٹائم کے مطابق ہو رہے ہیں. جی ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام صبح زندگی کے ساتھ, اور صبح زندگی کی طرف سے آپ نے جو ہے خوبصورت ترانہ ملاحظہ فرمایا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہرحال چلتے ہیں ہم رباب کی طرف, تاکہ رباب جو ہے ڈاکٹر سلیل فاطمہ کے ساتھ گفتگو جو ان کی جاری ہے اس کو آگے بڑھا سکیں. جی رباب,
بہت شکریہ خورم, اور امید کرتا ہوں ناظرین کو خوبصورت ترانہ ہی پسند آیا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ, سوال کہ بچے اگر نیند میں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو کہ گھر میں پہلا اسٹیپ ماں باپ ہی اٹھاتے ہیں ہر چیز میں, تو کیا کرنا چاہیے گھر میں ہمیں؟
سب سے مین جو ہم اس سیٹنگ میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بچے کی سیفٹی, اس لیے کہ آپ سلیپ واکنگ کو ترنت ختم نہیں کر سکتے, فوراً ختم نہیں کیا جا سکتا, تو بچے کی سیفٹی کے لیے گھر میں میجرمنٹس لینے پڑیں گے. کمرے سے شروع کرنا پڑے گا کہ اگر بچے کا بستر یا 2-story بیڈ پہ سو رہا ہے یا 1-story بیڈ پہ بھی سو رہا ہے, تو فلور سیٹنگ سونے کے لیے رکھی جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں فلورز ہیں تو کوشش کیا جائے کہ آپ لوگ سب گراؤنڈ فلور پہ سوئیں, کہ بچہ سیڑھی سے اترتے وقت نہ گر جائے. آل دو چانسز ہیں کہ بچہ سیڑھی پہ چڑھے گا, لیکن اس کے کم ہیں بہ نسبت جتنا اترنے کے ہیں.
یا آپ یہ کر دیں سیڑھی کا کہ کوئی ایسا سا لگا لیں رات کے وقت کہ وہ بچہ چڑھ ہی نہ سکے, جی بند سا ہو جائے.
جی, اس کے علاوہ دروازوں کو پراپرلی لاک کیا جائے. اس طریقے سے لاک کرنا کافی نہیں, بلکہ لاک بھی ایک ایسی جگہ پر ہو کہ بچے کا ہاتھ بھی نہ جا سکے.
بالکل,
اور چابیاں, بچہ جاگ رہا ہو تو اس کے سامنے بالکل بات نہیں ہونی چاہیے کہ کہاں رکھی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ نیند میں
جی
رجسٹر ہو جائے گی بات. اس کے علاوہ کچن کے دروازہ, کچن کے لاکس, یہ سب چیزیں پراپرلی لاک ہونا چاہیے. کچن میں اگر چوریاں اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس, تو اس کو
کسی سیف جگہ پہ,
جی بالکل, جہاں پہ بچے کی ریچ نہ ہو. اس کے علاوہ گھر میں دوائیاں ہوتی ہے, اس کو پراپرلی ایسے شیلف میں رکھا جائے کہ جس کا لاک ہو, پراپر لاک ہو. اس کے علاوہ ایون کھڑکیوں پر بھی پراپر طریقے سے
بڑے
تالے لگے ہوئے ہوں, اس طریقے کا. یہ تو کمرے کے لحاظ سے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ابھی جو ذہن میں آیا ہے وہ یہ کہ آپ اگر بچہ نیند میں چل رہا ہے اور ماں نے دیکھ لیا کہ بچہ چل رہا ہے یا باپ نے دیکھ لیا, اس کو جگایا جائے یا نہیں جگایا جائے؟
نہیں, یہ بہت خطرے کی بات ہوتی ہے کہ اگر بچہ چل رہا ہے, اس لیے کہ وہ اس فیز میں ہے کہ अगर आप उसको अचानक से जगा देंगे तो वो बहुत डिसोरिएंटेड हो जाएगा. एम्बैरसमेंट और वो सब बातें तो बात की हैं, लेकिन वो खुद बहुत खौफजदा हो जाएगा.
सही.
तो डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि उस फेज में बच्चे को बिल्कुल जगाया ना जाए, मतलब कि आप उसकी बस उंगली पकड़ के उसको बिस्तर तक लेके जाएं तो वो बिस्तर पे जाके वापस लेट जाएगा.
तो इन्हें आप बिल्कुल ना जगाएं इसको,
इसलिए कि ये वाली बातें उसके माइंड में अभी रजिस्टर नहीं होती हैं कि वो नींद में चल रहा है. अगर आप उससे कल सुबह पूछेंगे तो उसको कुछ याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको रात में उठा कर ज़बरदस्ती कि उठो उठो ये नींद में क्या हो रहा है इस तरीके की कोई बात करेंगे तो वो बहुत खौफजदा हो जाएगा.
अच्छा,
इसके दिमाग पर बुरे असरात पड़ सकते हैं. तो बेहतर ये है कि जब बच्चा इस तरीके से नींद में चल रहा हो तो बस उसको जेंटली उसको ऐसी बात बोले, चलो सो जाओ, अच्छा सा सो जाओ, इस तरीके का सपोर्ट देके ताकि बच्चा सो जाए.
अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये काम मैं खुद भी करती हूँ और अक्सर देखा गया है कि बच्चे को अगर रूम में सुला दिया जाए तो बच्चे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है उसके रूम का, जो वो जिस रूम में वो सो रहा है. ये सही है या नहीं है, किया जाए अगर बच्चा आपका चल रहा है उसी रूम में चलना शुरू हो और घर की बाकी जगहों पर ना आए, इसमें आपका क्या ख्याल है?
अगर देखिए घर की बाकी जगह अगर आपके कमरे के बिल्कुल पास है कमरा तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कमरे का दरवाजा खुला रखें.
खुला रहे,
इसलिए कि जब बच्चा बाहर निकलेगा अंदर आपको नहीं पता वो किस चीज से टकरा रहा है, अंदर क्या हो रहा है,
कहाँ का सर लग रहा है.
जब बाहर निकलेगा तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि बच्चा सेफ है, चल रहा है, आप उसकी उंगली पकड़ के उसको वापस अंदर लेके जा सकते हैं.
सही.
थोड़े टाइम के लिए माँ बाप को मेहनत करनी पड़ेगी कि वो टाइम रिकॉर्ड करें कि बच्चा कितनी देर में चलना शुरू करता है, कितना फ्रीक्वेंट इसका ये एपिसोड होता है नींद में चलने का.
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया यहाँ तक. तो और यहाँ मैं चलना है खुरम की तरफ, देखते हैं खुरम आज क्या ताज़ी खबर हमारे लाए.
बहुत शुक्रिया जी, मैं भी जो है आप लोगों के मौजू से जुड़ी हुई एक चीज़ लेके आया हूँ. और इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ जाऊँ, मैं सिर्फ ये बताते चलूँ कि बच्चों की नफसियात को समझना जो है एक वाकई मुश्किल काम है, और इसी वजह से बच्चों के, ख़ास करके बच्चों के माहिर नफसियात होते हैं जो जो है बच्चों के नींद के मसले या उनके जो है गुस्सा आना या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको डील करते हैं. तो इन चीज़ों को जो है मेरे ख्याल में संजीदा लेना चाहिए ताकि जो है इन मुश्किलात से बहरहाल जो है छुटकारा पाया जा सके. बहरहाल नींद के फ़वाद क्या हैं, 8 घंटे नींद के फ़वाद क्या हैं, 8 घंटे से कम होगी नींद तो उसके ज़्यादा जो है फ़ायदे नहीं होते. इस वजह से जो है मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ नुकात लेके आया हूँ. कहते हैं कि अगर आप 8 घंटे पूरी नींद करें तो उसका एक जो बहुत अहम फ़ायदा है वो ये है कि आपको दिल की जो बीमारियाँ हैं वो कम से कम होंगी. उसके अलावा कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हैं, ऐसे कैंसर हैं कि अगर आप जो है काफ़ी अरसे लंबे अरसे तक आप जो है नींद पूरी तरह सही तरह नहीं कर पा रहे, या कुछ लोग होते हैं कि वो 8 घंटे सोते हैं लेकिन सोने के दरमियान जो है वो चलना या दरमियान में जो है रात के वक्त जो है नींद का खुल जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं बाइस बनती हैं कि आपकी जो है 8 घंटे की जो नींद है वो सही तरीके से जो है कामिल ना हो सके. अलबत्त एक और चीज़ भी मैं बताते चलूँ कि एक नई रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि रात को एक बार नींद में 8 घंटे की जो नींद है उसमें एक बार जागने से जो है कुछ ख़ास किस्म के हमारे बदन में हार्मोन होते हैं जो हमारे बदन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसमें जागना जो है वो बहुत अच्छा होता है. बिल्कुल इसी तरह ही इसलिए दीन इस्लाम ने भी हमें जो है रात की नमाज का जो है बहरहाल कहा गया है, और मेरे ख्याल से ये इसी से जुड़ी हुई है और इसका जो है बहुत फ़ायदा होता है. इसके अलावा कहा जाता है कि जितनी आपको स्ट्रेस है वो स्ट्रेस जो है आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब आप 8 घंटे की नींद करते हैं. उसके अलावा कहा जाता है कि जिन लोगों को ये मसला है कि वो जो है उनकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, उनको चीज़ें भूलती जा रही हैं, तो आप अगर आपकी नींद का मसला है तो यकीन माने कि उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है आपकी नींद का है. अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आपकी मेमोरी पर, आपकी याददाश्त पर बहुत असर डालेगा. डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा तोड़ है. अगर आपको डिप्रेशन रहता है तो कोशिश करें कि आप जो है 8 घंटे की प्रॉपर और सही जगह पर, ऐसे कमरे में जहां पर जो है टेलीविज़न वगैरह ना हो, ऐसा जगह जहां पर आप जो है खाना ना खाते हो और एक सुकून वाली जगह, वहां पर अगर आप सोएं तो आपका जो है डिप्रेशन कम होने में बहुत मदद मिलेगी. इसके अलावा कहा जाता है हमारे बदन का दिफाई सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है अगर आप लोग 8 घंटे की पूरी नींद ना लें. तो ये कुछ नींद के फ़वाद थे. चलते हैं एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा. जी टमाटर और हमारे जो है अक्सर खानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक जो मसला है इसके साथ बेचारे के साथ वो ये है कि खानों में जब हम इस्तेमाल करते हैं इसे तो इतना इसको तेल में जो है पकाया जाता है कि इसकी जो खसूसियात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. टमाटरों को सलाद में जो है कच्चा खाया जाए, उसके बहुत से फ़वाद हैं. एक बहुत अहम फ़ायदा, जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, विटामिन सी इसमें भरा हुआ होता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़ला ज़ुकाम कम हो तो इसको भी दिन में दो तीन बार जो है ऐसे ही जो है एक या आधा टमाटर जो है उसको पारा थोड़ा सा नमक लगा के उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा कहा जाता है कि हमारे लिए जो ये ऐसी वो सब्ज़ी है जिसके अंदर जो है फैट चर्बी जो है वो बिल्कुल नहीं होती। उसके अलावा कहा जाता है कि सोडियम की मिकदार इसमें बहुत कम होती है और ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत मदद देता है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ जो है वो वाइटामिन के का टमाटरों में होना है, और विटामिन के का अगर आप लोगों को याद हो हम बहुत बार बता चुके हैं विटामिन के वो चीज़ है जो हमारा जब कोई हमारा ज़ख्म हो जाता है कट लग जाता है तो उसमें से जो खून आता है फिर खून की जो क्लॉटिंग है या खून का जमना या खून का रुक जाना विटामिन के का जो है एक बहुत बड़ा उसमें रोल होता है और खून को खूनरीजी जो है खून जो निकल रहा होता है कहीं से उसको रोकने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी ब्लड शुगर खून की जो में जो शुगर की मिकदार है उसको कंट्रोल होने में बहुत मदद देती है। विटामिन ए जो हमारी जिल्द के लिए और उसके अलावा हमारी जो नज़र है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी इसमें इसके अंदर बारह सरशार है। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ किस्म के कैंसरों से भी हमें बचाता है। तो बहरहाल जो है टमाटर जो है कोशिश करें कि बहरहाल दिन में या हफ्ते में 4-5 बार ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि जो है इसके फ़वाइद से जो है इस्तफादा किया जा सके। ये तो कुछ मेरी बातें थी, वक्त हुआ है दोबारा चलने का रुबाब की तरफ ताकि रुबाब जो है दोबारा गुफ्तगू को आगे चला सकें। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम, और बहुत ही बेहतरीन और मुफीद नुकात की तरफ आपने इशारा किया। और डॉक्टर साहिबा, वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है और आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम बच्चों को डॉक्टर के पास कब लेके जाएँ और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
अगर बहुत बच्चे में देखा जा रहा है कि बहुत फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हैं इसके और बच्चे खदशा है कि वो अपने आप को या घर में किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जैसे बड़ा बच्चा बड़ा होता जाएगा तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए नॉर्मली, लेकिन अगर आपको लगा कि बच्चा टीनेज तक पहुंच गया 14-12-13 साल की उम्र में है और नहीं ख़त्म हो रही और वही सिलसिला है
चलता जा रहा है
तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाया जाए।
ठीक है,
इसके अलावा अगर नींद में चलने के साथ उसको दूसरी ऐसी बीमारियां मसलन कि मिर्गी जैसे जो नींद में झटके हैं या फिर वो बहुत खौफनाक बातें करता है नींद में जिसका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर दिल की कोई ऐसी बीमारी यानी कोई साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिसऑर्डर्स भी उस स्लीप मतलब पैरासोमनियास के साथ आ रहे हैं तो फिर लेके जाया जाए। इसके अलावा जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, अब बहुत सारे ममालिक में स्लीप लैब्स बन गई हैं, यानी पेशेंट को उसमें 1-2 नाइट्स के लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है, फिर ईईजी ब्रेन में कैसी वेव्स जनरेट हो रही हैं ड्यूरिंग स्लीप नींद के दौरान वो रीड की जाती है, उसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है, अगर सीवियरिटी ऐसी है तो फिर मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन इनिशियली डॉक्टर्स जो बात करते हैं वो स्लीप हाइजीन की बात करते हैं और इसके अलावा ये कि बच्चा सोने से पहले ज़रूर बाथरूम जाए, पेशाब करने की आदत हो बच्चे की, इसके अलावा शाम में ऐसे बच्चों को कैफीन और बहुत ज़्यादा लिक्विड ड्रिंक्स ना दी जाए, यानी जिससे उसको यूरिनेशन की फीलिंग हो रात में, ये सब ना हो। इसके अलावा एक जो चीज़ है जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड अवेकनिंग, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे को एक हफ्ते तक उसको ऑब्जर्व किया जाए कि जब वो सोने जाता है और जब वो उसका ये एपिसोड स्लीप वॉक का शुरू होता है वो क्या ड्यूरेशन है उसका, क्या टाइम है, उसके बाद अगले एक हफ्ते में उस एक्सपेक्टेड टाइम के 15 मिनट पहले बच्चे को थोड़ा उठाया जाए।
अच्छा,
उठाने से मतलब मेरा ये नहीं कि बच्चे को बिल्कुल फ्रेश करके चलो भाई सुबह
दे दो
कि उसकी जो स्लीप साइकिल है मैंने जिस तरह पहले बात की बस वो डिस्टर्ब्ड हो जाए, ताकि जब अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड हो जाएगी तो एक हफ्ते में या ऑन गोइंग पीरियड में उसके ये एपिसोड्स ख़त्म हो सकते हैं।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत ही कम वक्त में एक बेहतरीन जो आप बोल सकते हैं गुफ्तगु हमारी रही, उम्मीद करते हैं हमारी नाज़रीन को भी पसंद आई होगी, बहुत से सवालों का जवाब भी उनको आज मिल गया होगा। मैं डॉक्टर साहब से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ आप इतना वक्त हमारे प्रोग्राम के
आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और यहाँ हम चलते खुर्रम के पास,
बहुत शुक्रिया रुबाब और डॉक्टर सुलेल फातिमा आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मौजू था और इस पर जो है मज़ीद भी गुफ्तगु होनी चाहिए, इनशाला हम कोशिश करेंगे दोबारा इस मौजू पर गुफ्तगु की जाए डॉक्टर सुलेल फातिमा के साथ। और बहरहाल अब वक्त हुआ है हमारा कि हम लोग हमने जो है बहरहाल एक वीडियो क्लिप बनाया है जो ईरानी कालीन होते हैं उस सिलसिले में, और वो आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप लोगों ने ईरानी कालीन जो हैं बड़े खूबसूरत बड़े मशहूर पूरी दुनिया में मशहूर हैं बहरहाल, और उसके बारे में जो है एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमें आपकी खिदमत में पेश किया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बहरहाल कोई ख़ास चीज़ अगर आप ईरान से देखना चाहते हैं तो हमें हमारे फेसबुक पे जो है कमेंट देके आप बता सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, ज़रूर वादा नहीं करता लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में भी नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जा सके। हमारे साथ जो है नवीद नकवी साहब लाइन पे हैं,
पाकिस्तान से हैं जी, मैं आपकी खिदमत सलाम अर्ज करती हूं।
जी वालेकुम अस्सलाम जी,
जी क्या हाल है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला।
नवीद भाई कैसे हैं आप?
जी खुर्रम भाई शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक खैरियत,
और शुक्रिया अदा करता हूँ आपने एक बार फिर जो है टाइम दिया हमारे प्रोग्राम में।
जी
अच्छा नवीद भाई, जो मौजू हमने इंतखाब किया बड़ा दिलचस्प किस्म का मौजू है, इंटरनेट के पर हमारी गुफ्तगू चल रही है और अक्सर ये बहस होती है जो दानिशमंद हैं अहले इल्म हैं उनके दरमियान ये बहस चलती है कि जी किताबों की कभी जगह नहीं ली जा सकती, प्रिंट मीडिया को कभी जो है वो हटा नहीं सकता इंटरनेट या वेबसाइट या पीडीएफ या वर्ड की फाइल, आप इस बारे में क्या कहते हैं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि किताब ना सिर्फ इंसान का बेहतरीन दोस्त है बल्कि ये इंसान के इल्म हुनर और ज़हनी इस्तेदाद में भी इजाफा करती है।
सही है,
यानी नो डाउट के सोशल मीडिया और इंटरनेट के बाद यानी कुतुबबीनी का रुझान जो है वो कम हुआ,
ठीक है,
मतलब किताबें इसकी एक और वजह ये भी है कि किताबें जो कि महंगी है, इंफॉर्मेशन उनमें कम होती है
जी।
और आपको इंटरनेट से बहुत बड़ा जखीरा मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ एक जो नेगेटिव चीज ये है कि इंटरनेट से वो जो आपके बच्चे का जो इनोवेटिव माइंड था वो खत्म होता जा रहा है, यानी स्टूडेंट भी आप देखेंगे शॉर्टकट के आदि हो रहे हैं।
हाँ, अच्छा नवीद यहीं पर ये यही जो बात, माफ कीजिएगा मैंने आपकी बात काटी लेकिन बड़ी अहम आप बात करें, ये शॉर्टकट की जो आपने बात की है, मैं ये मेरे जहन में यही बात चल रही थी कि जी हम किताब में अगर एक चीज़ ढूंढनी है तो अगर आप किताब उस किताब जो आपके हाथ में है उसको जानते नहीं है तो आपको आधा एक घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर आपने एक सर्च मारनी है तो सर्च आप करेंगे और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा।
ये शॉर्टकट के अपने इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, लेकिन उसका फायदा तो ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई,
ठीक है,
लेकिन वो जो आपका टेक्निक थी, जो आपकी सर्च थी, जो आपकी जस्तजू थी, वो इधर खत्म हो गई।
सही है, बिल्कुल।
आप पहले तहकीक किया करते थे, 10 रेफरेंस बुक देखा करते थे, उसका आपका नॉलेज बढ़ता था, आपका रिसर्च आती थी, इनोवेटिव आइडिया आता था, लेकिन ये चीज खत्म होती जा रही है इंटरनेट की वजह से, यानी इंटरनेट का जो बहुत बड़ा नुकसान भी है।
बिल्कुल ऐसा ही है,
इंसार करना शुरू हो गया आजकल तालिबे इल्म।
बिल्कुल, ये जो नवीद जी जो आपने बात की के रिसर्च करना, ढूंढना और जो जस्तजू करना, एक चीज के पीछे जाना, ये खत्म हो गई है, तो आपके ख्याल में ये जो जहन का हम लोग इस्तेमाल करते थे पहले कि माफ कीजिएगा कि ये किताब इस किताब को देख लें, उस किताब को देख लें, वो किताब देखते देखते चार जो है वो नई चीजें उसके अलावा जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो भी पढ़ने को मिल जाती थी, तो इस हालत में क्या किया जाए आपके ख्याल में?
देखिए अभी जो कल्चर चल रहा है, मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल से वादे करूंगा, देखिए वालदैन जब बच्चे की सालगिरह होती है तो किताब के बजाय मोबाइल गिफ्ट कर रहे होते हैं, जो यानी वालदैन खुद एक रस्म एक रवाज जो है बना रहे होते हैं,
आईपैड हो गए और इस तरह के टैबलेट
जो आजकल देख रहे हैं उनमें भी पढ़े लिखे जो गिराने हैं उनमें आप देखें कि अच्छी किताबें आपको देखने के लिए नहीं मिलती।
सही,
तो जरूरत इस अमर की है कि किताब कल्चर को फरोग दिया जाए और स्पेशली किताबों की कीमतों में जो है कमी की जाए ताकि ये बुक का जो कल्चर है बुक रीडिंग का किताब देने का इसे फरोग मिल सके।
सही।
Okay. अच्छा मैं यहाँ पे एक ही पूछना चाहूंगी कि स्कूल के अंदर
मजीद मैं एक इमाम अली अलैहिस्सलाम का यहाँ पे सही करना चाहूंगा कि इमाम का फरमान है कि अपनी औलाद की तरबियत आने वाले दौर को पेश नजर रखते हुए करो,
ठीक है,
इसके लिए उनसे पैदा किया गया। तो इंटरनेट में चूंकि ये शुत्र बेमुहार तो इस हवाले से जब इंटरनेट में हम अपने बच्चों को भेजते हैं या उनको फेसबुक पे या तरह की चीजों पर अलाउ करते हैं तो हमें उन पे चेक रखना चाहिए। आप देखें इस इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें ऐसी आई लाइक जो कैरिकेचर जो कार्टून बनाए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और फिर उसे नाम निहाद आजादी इजहार राय का नाम दिया गया, ठीक है, जो टोटली हमारे मुसलमानों के खिलाफ एक चीज जो से चल रही है,
ठीक है,
तो इस हवाले से भी हमें देखना चाहिए।
हाँ, होशवास में रहना चाहिए कि जो चीज पढ़ रहे हैं वो क्या है, कहाँ से है, उसका रेफरेंस। यही जो है नबी साहब, यही एक सवाल दोबारा आपसे पूछूंगा कि जब हम इंटरनेट से एक चीज को निकाल के उसको पढ़ते हैं तो उसका रेफरेंस, उसकी जो स्टैंडर्ड है या वो वेबसाइट किसी सही बंदे ने लिखी है, इसका पता करना बड़ा मसला होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
Exactly, ये जो रेफरेंस लाइक आजकल बहुत सारे जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उन्होंने विकिपीडिया के रेफरेंस दिया। अब विकिपीडिया को आप देख लेंगे, विकिपीडिया एक ऐसी साइट है कि जो ओपन है हर किसी के लिए, कोई भी जाके वहां पे कोई बात भी कर सकता है। वो मुस्तरद है, गैर मुस्तरद है, उसके भी मालूम नहीं है कि ये बात वाकियन ये बात ठीक है। अब उस पर लाइक मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अपने बारे में जाके कोई बुलंद बांग दावे कर दूं कि अब ये तो देखने वाले ने या दूसरे बंदे ने डिसाइड करना है कि मैं कितनी इस्तेदाद और काबिलियत रखता हूँ। ये विकिपीडिया या इस तरह की दूसरी साइट, गैर मुस्तनद साइट जो है, वो किसी प्रोजेक्ट में या रिसर्च में वोट हम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका।
बिल्कुल, शुक्रिया जी। रुबाब, आप कुछ पूछना चाह रही थी?
वक्त भी खत्म हो रहा है, बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे स्कूल में और असातिज़ का जो बोल सकते हैं इसमें किरदार कितना है, जो कि आजकल देखा गया है कि स्कूल टीचर्स बच्चों को किताबों की जगह साइट्स या वेबसाइट्स जो है वो रिकमेंड करती हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है?
बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि कुछ पिछले दिनों टीचर्स के साथ इस हवाले से गेट टुगेदर भी हुआ, तो टीचर्स भी शिकवा सुना थे इस बात पे कि स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्टकट की आदी हो गए हैं।
ठीक है,
शॉर्ट ही हो गया, किताब बुक रीडिंग की आदत नहीं रही, इंटरनेट फेसबुक पर टाइम ज्यादा देने की वजह से इसलिए उन्हें फिर ये स्काइप और फेसबुक की तरफ ले जाया जाता है, क्योंकि वो उनकी आदत बन चुकी है, ट्रेंड बन चुका है।
बिल्कुल,
तो इसलिए कभी ये भी पॉसिबल है कि आप डिजिटल लाइब्रेरीज बनाए, डिजिटल लाइब्रेरीज बनाए, बड़ी बड़ी तादाद में रिसर्च ओरिएंटेड बुक्स हों, ना कि गैर मुस्तरद
इस्लामाबाद से आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। इंशाल्लाह मौजू जो है बड़ा गंभीर है, इसके पर जो है आपसे दोबारा बात करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल भी जो है आपसे राबता करें। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका।
इंशाल्लाह बहुत
शुक्रिया जी। बड़े जो है, बहरहाल मैंने जैसे कहा मौजू बड़ा गंभीर है, इस पर जो है बहुत मजीद गुफ्तगू जो है वो करनी चाहिए।
इंशाल्लाह खुर्रम, वक्त खत्म होने से पहले मैं नाज़रीन को कल के जो मेहमान के बारे में पता चल रहा हूँ, डॉक्टर फहीम मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रेस और बेचैनी के बारे में जो है इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे, कोई भी आपके सवाल हो तो जरूर हमें बताइए
जी। बड़ा दिलचस्प मौजू है, इंशाल्लाह जो है प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। कोई सवाल आपके जहन में तो अभी से हमारे फेसबुक पर डाल दें ताकि हम जो कल डॉक्टर फहीम मकबूल से पूछ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे रुबा मंसूरी को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से इजाजत दीजिए।
खुदा हाफिज़।